अभी आपने सुना विशेषेण भूयते विपरीतम वा भवति इति, दोनों में लग जाएगा। विभु माने व्यापक, जो विविध रूप में तो होए, विविध आकारों में होए, और वही एक अकेला विविध आकारों को धारण कर ले। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप। जैसे कोई कहे कि स्वर्ण के आभूषण बहुत से बनते हैं, लेकिन स्वर्ण तो सब में एक ही है, वो व्याप्त है। और एक आदत होती है कि एक सा नहीं रह सकता, आकार एक सा कभी रह ही नहीं सकता, वो टिकता ही नहीं। अरे आप लोगों के आकार हैं का एक से हैं, पहले एक बच्चा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुमार हुआ, पौगंड हुआ, बचपन हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो वो आकार एक सा कहाँ रहता है। ऐसे दुनिया में जितने भी आकार हैं सब एक से नहीं रहेंगे, कभी जवानी होगी, कभी बचपन होगा, कभी बुढ़ापा आएगा, वो तो एक स्वाभाविक बात, प्रकृति का खेल है, उसके अनुसार चलेगा। भाई आप लाख कोशिश करो, तुम्हारे कोशिश करने से कुछ थोड़ी होता, वो तो स्वभाव है प्रकृति का, एक सा नहीं रह सकता। काल के और देश के गाल में रहेगा, या तो कहीं किसी जगह में रहेगा। देखो क्या बोले, बंबई में है तो बनारस में नहीं है, बनारस में है तो बंबई में नहीं है, एक ही जगह न रहेगा। जो पदार्थ हमसे भिन्न होगा, ये निश्चित नियम है, वो एक जगह रहेगा। तो नियम बनाया कि ससीम और नश्वर दो चीजें जिसमें होती हैं, दुख का हेतु होता है। ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी। दुख का हेतु माने दुख का कारण कौन होता है, जो ससीम हो और नश्वर हो। अब हिसाब लगाइए, आपसे अतिरिक्त पदार्थ जितने भी हैं वो ससीम है और नश्वर भी है, इसलिए दुख के हेतु है। दुख का दुखालय है जगत, इसलिए माना गया। और जब वह जगत जगत रूप में नहीं दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, जेही जाने जग जाए हिराई, और जागे यथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने मात्र से जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है, घड़े सकोरे तब तक दिखाई देते हैं जब तक मिट्टी पर दृष्टि नहीं, और स्वर्ण के बने हुए आभूषण, हार है, कुंडल है, अंगूठी है, ये आकार विशेष तब तक मालूम पड़ते हैं जब तक स्वर्ण पर दृष्टि नहीं है। और जब आपकी स्वर्ण पर दृष्टि हो जाएगी तो आकार में आकर्षण नहीं होगा, आकार तो दिखते रहे, दिखे रहे, उसे क्या। आज जो आकारों में आकर्षण है वो केवल इसीलिए है कि तत्व पर दृष्टि नहीं है, देखो। और ऋण भी है, जैसे पृथ्वी माता का ऋण है तुम्हारे ऊपर, ये बहुत ध्यान देने की बात है। पृथ्वी का माता का क्यों ऋण है, बोले एक दाना आप गेहूं का डालते हो और हजारों दाना देवी दे देती है, और मलमूत्र भी छोड़ो वो क्षमा ही है, ठहरी, कुछ नहीं कहती है, कहीं भी गड्ढा खोद दो अपने से भर जाता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ऋण है। सवेरे उठते समय पृथ्वी के पैर छूना चाहिए, मां मुझे तुम धारा चमाम देवी, पृथ्वी देवी नमोस्तुते, हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम हमें धारण कर रहे हो, अगर न धारण करो तो हम कहां जाएं, ये ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए तत्व पर दृष्टि होनी चाहिए, उसके गुण धर्म। पृथ्वी का गुण क्या है, क्षमा, कोई कुछ कहे आप अगर क्षमा कर दो तो पृथ्वी का ऋण चुक जाएगा, नहीं तो ऋणी रहोगे धरती के। इसी तरह से जल तत्व का ऋण है तुम्हारे ऊपर, तुम जो रसा स्वाद करते हो, स्वाद मात्र जितना भी है, चाहे वो अम्ल लवण खट तिक्त का साय का हो और चाहे राग रागनी संगीत का रस हो, वो भी रस ही है, वो भी छह रस हैं जो आनंद है, भैरव है, हिंडोल है, कोश है, इनका तुम्हारे ऊपर ऋण है। इसलिए ये तभी चुकेगा जब जल तत्व का ऋण दूर हो जाएगा। आज जल तत्व को ऋण चुकाने के लिए उसके गुण धारण करना चाहिए। जले मधुर शीतलऊ, जल में मधुरता होती है और शीतल होता है। और तुम्हारे दिल दिमाग में हीटर लगा है तो फिर एसी क्या करेगा? एसी लगा रहा है और दिल दिमाग में हीटर सुलग रहा है तो फिर वो एसी कुछ काम नहीं करेगा। राग को आग माना गया है, संस्कृत में राग को विसर्ग हो जाती तो आ रह जाता, तो राग आग है। और ये आग जब जलती है या जलाती है, ये नियम है आग का, उसमें जितनी लकड़ियां डालते जाओगे उतनी जलती जाएगी जलती जाएगी। आप पर सूखी डालो चाहे गीली डालो सब भस्म। इसका अर्थ क्या हुआ? राग भी ऐसा ही है, राग भी एक आग है। कान खोल के सुन लेना, अनुराग में लालिमा आती है, परमात्मा का प्रेम होता है। तो जितना ही परमात्मा से प्रेम होगा उतना ही जल तत्व से उऋण होना होगा। और राग होगा तो आग में जलना होगा, राग आग है, ये याद रखना चाहिए। तो तेज तत्व से उऋण होने के लिए आपने सुना। अब वायु तत्व से, तो देखिए कोमल कोमल स्पर्श आप करते हैं, ये स्पर्श का तत्व पर दृष्टि नहीं है। हमने एक दिन निवेदन किया था कि मिठाई की जितनी भी दुकान है वो सब गन्ने का जल ही तो है। अब कहने न लगना किसी मिठाई की दुकान पे जाके कि क्यों गन्ने का जल रखा है सब में, न वो बिगड़ जाएगा। एक दिन मैं ऐसे समझा रहा था तो एक हलवाई भी बैठा था, तो वो तो बहुत नाराज हो गया। बोले वाह हमारी तो बिक्री खत्म हो जाएगी। हमने कहा भैया वो कहीं गन्ने का जल बता रहे हैं। हमने कहा गन्ने का जल तो आई भाई। तो तत्व पर दृष्टि यदि आपकी होगी, मिठाई की सारी दुकान गन्ने का जल दिखाई देगा तो फिर आपको आसक्ति समाप्त हो जाएगी। आप करके देखो, रूप जितना भी है बहुत बढ़िया है, बड़ी गोल्डन पैकिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत मन होता है देखते ही बने रहा, लेकिन अगर आपकी दृष्टि ये पहुंच गई कि अरे सूर्य ही तो है, रंग तो सब सूर्य का होता है, तेज तत्व है, इसमें क्या विशेषता, ये तो हमारा शरीर बने ही है तेज से। इसी तरह से स्पर्श है। हमने देखा लोग फूल की बगिया में जाएंगे, चट्ट से तोड़ लेंगे, आपने जेब में फिट कर लिया। अरे ये नहीं सोचते हो कि फूल में सुंदरता सुगंधी सुरभिता नहीं है, ये तो मूल में है। जब मूल से फूल अलग हो जाएगा तो धूल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इतने लोग बैठे हो, बड़ी सुंदरता, बड़े सुंदर है, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो छल छाण भजे रघुवीरा, तो बहुत सुंदरता है, लेकिन चेतन की वजह से है। मूल तो चेतन है ना, उसी चेतन मूल को यहां विभू कहा गया, व्यापक तत्व है विभूम। विभू इसलिए व्यापक है कि वो पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में। आकाश शब्द मधुर ध्वनि आई, हा बहुत अच्छा लगा। अरे बाबा मधुर ध्वनि है तो आकाश ही। इस तरह से तत्व पर दृष्टि यदि होगी तो आकार में आकर्षण समाप्त हो जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी। और आसक्ति तो राग है, वही तो आग है, वही तो तुम्हें जला रही है। इसलिए आग से जैसे बचा जाता है, अभी अभी हमने सुना कि वो कलकत्ता में कहीं आग लग गई और वो अरे हमने कहा उतनी दूर क्यों जाते, दिल में ही देखो, दिल में ही लगी है आग, और उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो, तो शायद फायर ब्रिगेड से बुझ भी जाए, और ये दिल की आग तो बहुत मुश्किल में बुझती, ये तो तभी बुझती है जब अनुराग प्रभु के चरणों में हो जाए, अपने आत्म तत्व की निष्ठा हो जाए। तो मैंने बताया था जो चीज ससीम है, नश्वर है, गेय है, दृश्य है, जड़ है, वही दुख का हेतु है, और जब उसमें परमात्मा का, असीम का, अनंत का नारायण निर्णय कर लोगे, बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, तो फिर वो, फिर तो जिसने मिट्टी देख ली उसको घड़े जगोरे से क्या लेना देना, रहेगा वैसे, ये नहीं कि घड़ा फूट जाए तब मिट्टी हो, जगत भी वैसे ही बना रहेगा, कोई हर्ज नहीं, यही तो जीवन मुक्ति का मजा है। जगत ज्यों का त्यों, घड़ा ज्यों का त्यों, अंगूठी ज्यों की त्यों, लेकिन उसको तो अंगूठी में स्वर्ण निश्चय है ना कि स्वर्ण का है। अच्छा प्रेम जो होता है आप देखिए विचार करके, वो भी मूल धातु की दृष्टि से ही होता है। इस शरीर से जो प्रेम है वो आत्मा की वजह से है, जब आत्मा का कनेक्शन कट जाता है तो गंगा जी में सिरा दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो किसी को आपने अंगूठी दी, तो अंगूठी को देख करके बहुत प्रसन्नता क्यों हुई, उसने समझा ये स्वर्ण की है, और 8 दिन में वो काली पड़ने लगी तो वो फेंक दी जाएगी, अरे हम समझे स्वर्ण की है। तो देखो स्वर्ण की दृष्टि से आकार प्यारा था, आकार भी जो प्यारा था वो स्वर्ण की दृष्टि से था, आज स्वर्ण नहीं मिला तो गड़बड़। इसी प्रकार से जितने भी आकार हैं, चाहे वो पति का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पत्नी का हो, जितने भी आकार हैं उन आकारों में आकर्षण ही इसीलिए है, तब तक है जब तक चेतन का संबंध है। इसी को यहां विभू शब्द से कहा गया, सत्ता एक है, सत्ता दो नहीं हो सकती, और वही सत्ता मैं के रूप में है, अहम के रूप में है, न हन्यते न जहाति, वो हक त्यागे न जहाति, जो हमको कभी नहीं छोड़ता है, कभी भी हमें अभाव का अनुभव नहीं होता है, उसी को कहते हैं अहम। वो आकाश आदि तत्व नहीं है, वो अहम। तो अब विभुम चिदानंद मरूप अद्भुतम, चिदानंद है। आप कहे कि सदानंद सत तत्व तो विभु से अभी सुन चुके, अब आया चिद, तो चिद और आनंद दोनों एक कैसे हैं? देखिए अभी अभी मैंने निवेदन किया था कि आनंद या प्रेम अपनी आत्मा में ही है, और उसी की सबको चाह है, डिमांड भी उसी की है, और उसी के लिए प्रयत्न भी है। जैसे एक मिट्टी का ढेला आप ऊपर आकाश में फेंको, तो जितना जोर होगा उतना ऊपर जाकर के फिर आएगा कहां, मिट्टी में आएगा। तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण से आ गया, ये कहोगे वो अपनी जाति में मिला है आके, मिट्टी उसकी जाति है। तो एक फिजिक्स का नियम है ठोस कि वस्तु जो भी जाती है वो अपनी समानांतर जाति में जाती है, तो मिट्टी की जाति है इसलिए मिट्टी में मिट्टी आई। आज जल को चढ़ा ले जाओ ऊपर, चढ़ा ले जाओ ऊपर, अब फिर जब नल खोलोगे तो पानी नीचे ही तो आएगा। इसका मतलब ये है कि जल की जाति नीचे है, जल नीचे है इसलिए वो आता है। ऐसे ही एक दीपक ले ओ, उसमें घी भरो, उसमें बत्ती डालो, फिर उस ज्योति को झुकाना चाहो तो नहीं झुकेगी, करके देख लो प्रैक्टिकल, क्यों? बोले उसकी जाति सूर्य है, ऊपर है। तो हर वस्तु अपनी जाति की ओर बढ़ती है। तो जब मिट्टी का ढेला मिट्टी की ओर, पानी पानी की ओर, और ज्योति ज्योति की ओर बढ़ती है, तो हम लोग जो प्रेम की ओर, आनंद की ओर, सुख की ओर बढ़ते हैं, सुख क्यों? माने हमारी जाति ही है प्रेम और आनंद। अगर प्रेम और आनंद हमारी जाति न होती, हमारा स्वरूप न होता, तो हम अपने स्वरूप की ओर क्यों बढ़ते? ऐसा कोई विजातीय पदार्थ नहीं चाहता है। आंख में जरा सा तिनका कुछ पड़ जाए तो देखो कैसा खरा दोहेला होए। इसका मतलब विजाती पदार्थ हमें पसंद नहीं है। और आंख में काजल लगा लो अथवा अंजन लगा लो तो अंजन और काजल देखो यथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान। तो इसका मतलब सजाती पदार्थ से घृणा नहीं है। क्यों? कोई मरना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो सत है, विजाती पदार्थ पसंद नहीं है। किसी से कहोगे तुम मूर्ख हो तो नाराज हो जाएगा। अपने भले कह ले कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन तुम अगर कहोगे तो नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अरे हमको मूर्ख बता दे। तो इसका मतलब यह है कि वो विजाती पदार्थ है मूर्खता, वो तो ज्ञान स्वरूप चिद रूप है और आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप होने के कारण वो आनंद प्रियता है, उसमें प्रेम है, प्रियता है। दुनिया में जितने आपके आसपास लोग रहते हैं, आपके प्रति प्रेम ना करें एक दिन तो आपको परेशानी पड़ जाएगी कि अरे क्या बात हो गई भाई, हमसे कोई बोलता ही नहीं है, हमसे कोई प्रेम ही नहीं करता है। तो ये जो प्रेम प्यार है, ये आनंद का छींटे हैं, इसलिए आप उसको चाहते हो। सद तत्व की सक्रिय अवस्था कर्ता कर्म करण है और निष्क्रिय अवस्था केवल दृष्टा मात्र है। ऐसे ही चिद की सक्रिय अवस्था ज्ञाता ज्ञान गे है और निष्क्रिय अवस्था केवल ज्ञान मात्र, चिद मात्र है। ऐसे ही आनंद की सक्रिय अवस्था भोक्ता भोग भोजन है और निष्क्रिय अवस्था केवल प्रीति है, प्रेम, जिसको राधा तत्व कहा गया, प्रीति तत्व है। वो निष्क्रिय अवस्था है आनंद की। तो आनंद की जो निष्क्रिय अवस्था है प्रीति, वो सब कोई क्यों चाहता है? क्योंकि उसका आनंद स्वरूप है और आनंद उसी होगा जो चेतन होगा। जड़ में थोड़ी आनंद होता। आप कहेंगे हमें तो बहुत अच्छा लगता है जड़। जड़ अच्छा लगता है नहीं, आपके मन ने ये कल्पना कर ली है। क्यों? बोले जो नश्वर है, ससीम है, अभी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उस वही तो दुख का हेतु है। जब खत्म हो जाएगा तब रोगे, तो दुख का हेतु तो बना। नश्वर और ससीम दुख का हेतु होता है। चिदानंद मरूप मद्भुतम। और ये आपने सुनाई कि जो सत्तावान चीज होती है, ओ सत्तावान वस्तु, जैसे आप अपने को समझ रहे, आपका कोई आकार नहीं, ये तो शरीर का आकार बन गया, वो अरूप है। जिस जिस जिसकी व्यापक तत्व होगा उसका रूप नहीं हो सकता, व्यापक तत्व का रूप नहीं हो सकता। आप जैसे आप कहते हो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान दुर्गा, ये तो आकार में है। ध्रुव को दर्शन दिए, मीरा को दर्शन दिए, तो लेकिन उसमें भी आपको ये देश और काल की कल्पना करनी होगी कि इस देश में, अयोध्या में या कहां में। और दूसरी बात काल की कल्पना, इसीलिए भगवान राम भी अवतार लेकर के आते हैं तो साकेत धाम चले जाते हैं, श्री कृष्ण गोलोक में चले जाते हैं, जिससे दुनिया के लोग ये न समझें कि चलो देह ऐसी बनी रहेगी। देह तो नश्वर है, देह तो रह नहीं सकती, यद्यपि उनके शरीर सच्चिद आनंद के ही होते हैं। मालूम पड़ता है कि ये हमारे जैसे हैं, लेकिन उनका आकार सच्चिद आनंद का होता है, आनंद करपाद मुखोदर आदि। इसलिए कभी उनके आकारों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। उनका तो नाम भी है, मधुर रूप भी है, लीला भी है, आश्रय भी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मानसिक पूजन हमेशा सगुण साकार का ही करने से निर्विकार तत्व का ज्ञान होता है। अरे भाई, ये तो सीधी सी बात है, जब बर्फ का प्रयोग करोगे तो जल अपने आप थोड़ी देर में हो जाएगा। तो अरूप अद्भुतम और अद्भुत शब्द एक बहुत बढ़िया है। अद्भुत माने होता है अनिर्वचनीय। क्यों? कहा कि उसको क्या कहोगे, है कहोगे तो कह दिखे न, दिखना चाहिए इंद्रियों के द्वारा, और नहीं कहोगे तो वाह नहीं कैसे, मैं तो हूं। तो अनिर्वचनीय तत्व इसलिए अनुभव अद्भुत कहा गया। क्यों? बोले भाई, बात एक ये है, जो देश में और काल में वस्तु में परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है, वो नश्वर होता है, और नश्वर पदार्थ दुख का हेतु होता है। ससीम होए और नश्वर होए, तो अद्भुत इसलिए कहा गया कि आखिर कहां क्या। अद्भुत माने जो आश्चर्य बोधक होता है उसको अद्भुत कहते हैं। तो हम इसको क्या कहें, जब देश में काल में सीमित नहीं है, नश्वर नहीं है, ससीम नहीं है, दुख का हेतु नहीं, आनंद स्वरूप है, तो अद्भुत ही तो है, जिसका आकार प्रकार विकार संस्कार है नहीं। छह चीजें होती हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। छह चीजें हैं, छह चीजें इसमें नहीं है। ना उत्पन्न होता है, जायते जायते असौजा, जो पैदा हो तो पैदा तो होता नहीं है। कल एक माई पूछ रही थी, माया किससे उत्पन्न हुई है? तो माया तो किसी से जब उत्पन्न हुई हो तब न माना जाए, माया तो माया है। या माने जद दृश्यते, मां माने नहीं, जो दिखाई दे रहा है तैसा नहीं है। न रूप मत्से तथोपलभ्यते, नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा। ये तो श्लोक ही बोल रहा, माया किसी से उत्पन्न नहीं, कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, है ही नहीं, लेकिन भ्रम से दिखाई पड़ती है। और जब कभी दुख का लगता है तो कहते हैं, अरे भाई भगवान की माया है। तो जब अपनी नहीं मानो तो भगवान की मान लो, और का। तो ये चीजें न उत्पन्न होती है, न जायते अस्ति, वर्धते बढ़ती रहती है, और अपक्षीयते विपरिणमते, जैसे दूध से दही बन जाता है, इसी तरह से परिणामवादी जो परिणाम मानते हैं, अर्थात परमात्मा ही इस नाम रूप में अपने आप अपने को बनाए देता है। नाम रूपाणी व्याकरवाणी, जैसे मिट्टी घड़े सकोरे में अपने को बना देती है, ऐसे परमात्मा ही बना देता है। लेकिन दृष्टि खुली जाए, खुले तब ना, दृष्टि नहीं खुलती। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे दे कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, ईशा मुझे बचा सकता है तेरा सहारा, मुझे बचा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे
देवता।
बोलो कृष्ण भगवान की जय।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 15 जनवरी मंगलवार पूष सुदी सातम मकर संक्रांति का आज पर्व है और भगवान की माया देखिए कि आज इतने संतों के एक साथ यहां दर्शन होते हैं। पूज्य आचार्य महाराज से तो हम बराबर सुन रहे हैं केवल उपनिषद के बारे में और आज उसमें धूपसली की तरह जो पूज्य संत जी महाराज पधारे हैं उन्होंने भगवान श्री राम की बातें भी हमारे सामने रखी। तो आज मकर संक्रांति का जो पर्व है प्रेमपुरी के लिए तो बड़ा ही सार्थक हो गया। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।